Praise the Lord. God is good all the time, and all the time God is good. आज के हमारे मैसेज का टॉपिक है दुआ. आज हम खुदा के कलाम में से दुआ के बारे में सीखेंगे. लेकिन इससे पहले कि हम आज के पैगाम को शुरू करें, हम सब मिलकर दुआ करेंगे. समीर और आसमान के मालिक कादर मुतलिक खुदावंद, हम आपके हजूर आते हैं और दिलो जान से और रुखी गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं. आपकी सारी बरकतों के लिए, सारी नेमतों के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं. और आज के कलाम के लिए खुदावंद आपका शुक्र अदा करते हैं जो आप हमें देने वाले हो. खुदावंद आज जब हम आपके कलाम को सुने तो आप हमारे जहनों को, हमारे दिलों को खोलिए ताकि हम आपके कलाम को सुने, उसे समझें और उस पर अमल करें ताकि आपके नाम को जलाल मिले. आप हम सबके साथ होइए और हम सबको बहुत बरकत दीजिए. ये दुआ हम यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन. आज का हमारा टॉपिक है दुआ. दुआ एक मसीही की ज़िंदगी में एक बहुत अहम हिस्सा है और होना भी चाहिए. दुआ को हम अपनी सांसों से कंपेयर कर सकते हैं. अगर हम सांस लेना छोड़ दें तो हम मर जाएंगे. उसी तरह दुआ है एक मसीही की ज़िंदगी में. अगर हमारी ज़िंदगी में दुआ नहीं है तो एक मसीह की ज़िंदगी मुर्दा सी हो जाती है. इंसान के गुनाह करने से पहले खुदा और इंसान एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, लेकिन अब हम दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं. हम सब अपनी अंजीलें खोलेंगे, खरूज की किताब उसका 17 बाब 8 से 16 आयत तक. खरूज की किताब उसका 17 बाब 8 आयत से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे. और खुदा के कलाम में लिखा है, तब अमलीकी आकर रफाइन में बनी इसराइल से लड़ने लगे और मूसा ने योशुआ से कहा कि हमारी तरफ के कुछ आदमी चुनकर ले जा और अमलीकियों से लड़, और मैं कल खुदा की लाठी अपने हाथ में लिए हुए पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूँगा. तो मूसा के हुक्म के मुताबिक योशुआ अमलीकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए. और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था, बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलीकी गालिब होते थे. और जब मूसा के हाथ भर गए तो उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वो उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक इधर से दूसरा उधर से उसके हाथों को संभाले रहे. तब उसके हाथ आफ्ताब के गरूब होने तक मजबूती से उठे रहे. और योशुआ ने अमलीक और उसके लोगों को तलवार की धार से शिकस्त दी. तब खुदावन ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और योशुआ को सुना दे कि मैं अमलीक का नामोनिशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा. और मूसा ने एक कुर्बानगाह बनाई और उसका नाम यहोवा निसी रखा, और उसने कहा, खुदावन ने कसम खाई है सो खुदावन अमलीकियों से नस्ल दर नस्ल जंग करता रहेगा. आमीन. सब मसीहियों के दुश्मन होते हैं. शैतान हमारा दुश्मन है और बदरूहे हमारी दुश्मन है. हम पढ़ेंगे 8 आयत दोबारा से, खरूज की किताब 17 बाब और 8 आयत. तब अमलीकी आकर रफाइम में बनी इसराइल से लड़ने लगे. यहाँ पे हम देखते हैं कि अमलीकी खुदा के लोगों को, यानी इसराइलियों पे लड़ाई करने के लिए इसराइलियों से आए. अमलीकी इसराइलियों से लड़ाई करने आए और इनसे लड़ाई की. और मूसा ने योशुआ से कहा कि तू कुछ आदमी चुन ले और इन्हें लड़ने के लिए ले जा. और इसी दौरान मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर गए. मूसा ने अपने हाथ उठा लिए और दुआ करना शुरू की. हम देखेंगे 10 आयत से 11 आयत तक, खरूज की किताब 17 बाब 10 और 11 आयत. समूसा के हुक्म के मुताबिक योशुआ अमलीकियों से लड़ने लगा और मूसा और हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था बनी इसराइल गालिब रहते थे, और जब वो हाथ लटका देता था तब अमलीकी गालिब होते थे। आमीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब मूसा अपने हाथ उठा लेते थे तो इसराइली जीतते थे, लेकिन जैसे ही वो अपने हाथ नीचे कर लेते थे तो उनके दुश्मन यानी कि अमलीकी जीतते थे। हाथ उठाना जो है वो दुआ को रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा लगातार उन्होंने अपने हाथ उठाए रखे, और क्योंकि उन्होंने लगातार अपने हाथ उठाए रखे तो अमलीकी हार गए। हम 14 आयत पढ़ेंगे, खरूज की किताब 17 बाब और उसकी 14 आयत। खरूज की किताब उसका 17 बाब 14 आयत में लिखा है, तब खुदा ने मूसा से कहा, इस बात की यादगारी के लिए किताब में लिख दे और यहोशुआ को सुना दे कि मैं अमलीक का नामोनिशान दुनिया से बिल्कुल मिटा दूंगा। आमीन। यहाँ पे खुदा ने कहा कि खुदावन अमलीकियों का नाम बिल्कुल मिटा देंगे। ये इसलिए हुआ क्योंकि मूसा ने दुआ की। क्योंकि मूसा ने दुआ की तो उस दुआ का नतीजा ये निकला कि खुदा ने मूसा से वादा किया कि वो अमलीकियों का नामोनिशान दुनिया से बिल्कुल मिटा देंगे। कभी कभी हम दुआ करते हैं और उस दुआ का जवाब हमें बहुत जल्दी नहीं मिलता, बाद में मिलता है। शायद हमारी बच्चों की ज़िंदगी में हमें उस दुआ का जवाब मिले, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी हमारी है कि हम दुआ करते रहें। ऐसा भी हो सकता है कि शायद हमारे लिए किसी ने दुआ की हो तो आज यहाँ पे हम खुदा की इबादत कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने हमारे लिए दुआ की हो और आज हमने खुदावन्द यीशु को अपने निजात दहिंदा के तौर पर कबूल कर लिया है। यीशु ने बाइबल में कहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रख और वो जो तुझे सताते हैं उनके लिए दुआ किया कर। तो हमें चाहिए कि हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ किया करें, हम उन लोगों के लिए दुआ किया करें जो हमें सताते हैं। सच तो ये है कि हम अपने दुश्मनों के लिए इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि वो बुरे हैं, लेकिन अगर हम अपने दुश्मनों के लिए दुआ नहीं करेंगे तो वो और भी ज़्यादा बुरे हो जाएंगे और हमें नुकसान पहुँचाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम उनके लिए दुआ करें। कभी कभी हम दुआ करते करते थक जाते हैं, हमें ये लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है दुआ करने का, हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, और फिर हम हिम्मत हार जाते हैं और दुआ करना छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु ने बाइबल में कहा है कि लगातार दुआ करते रहो और हिम्मत ना हारो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि खुदा खामोश है, वो हमारी नहीं सुन रहे, लेकिन फिर भी हमें लगातार दुआ करते रहना है। अब हम देखेंगे कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम दुआ नहीं करते। तो सबसे पहले जो वजह है कि हम दुआ नहीं करते वो ये है कि हम सुस्त हैं। क्योंकि हम सुस्त हैं तो इसलिए हम दुआ नहीं करते। और दूसरी वजह ये है कि हम खुदा पे ईमान नहीं रखते या खुदा पे भरोसा नहीं करते, इसलिए हम दुआ भी नहीं करते। और तीसरी वजह ये है कि हमारे अंदर सब्र नहीं है, हम खुदा के साथ सब्र से पेश नहीं आते, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए होता है, तो इसी वजह से हम दुआ ही नहीं करते। दुआ हमें ज़िंदा रहने में मदद करती है, दुआ हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। अगर हम दुआ नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो जाएंगी। अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमें किन किन के लिए दुआ करनी चाहिए। अब हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हमें किन लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। हम अपनी अंजीलें खोलेंगे, पहला तिमोथियस उसका 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक। पहला तिमोथियस उसका 2 बाब 1 आयत से 4 आयत तक हम पढ़ेंगे, और खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, बस मैं सबसे पहले ये नसीहत करता हूँ कि मुनाजातें और दुआएं और इल्तजाएं और शुक्रगुजारियां सब आदमियों के लिए की जाएं, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। यह हमारे मुंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। आमीन। तो खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हमें सब के लिए दुआ करनी है। हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, जो हमें सताते हैं हमें उनके लिए दुआ करनी है, हमें हुक्मरानों के लिए दुआ करनी है, हमें बादशाहों के लिए दुआ करनी है, हमें अपने मुल्क के कानून के लिए दुआ करनी है, हमें बड़े मर्तबे वालों के लिए दुआ करनी है, चाहे वो बड़े मर्तबे वाले पुलिस वाले हों, चाहे वो हुकूमती लोग हों, चाहे वो हस्पताल के लोग हों, चाहे वो म्यूनसिपैलिटी वाले हों, इन सब के लिए हमें दुआ करनी है। लेकिन सवाल ये है कि हमें इन सब लोगों के लिए दुआ क्यों करनी है, हमें इन सब लोगों के लिए दुआ क्यों करनी है। इस सवाल का जवाब हम खुदा के कलाम में से ही देखेंगे। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, बादशाहों और सब बड़े मर्तबे वालों के वास्ते, इसलिए कि हम कमाल दीनदारी और संजीदगी से अमनो आराम के साथ ज़िंदगी गुजारें। आमीन। तो हमें इन सब लोगों के लिए इसलिए दुआ करनी है ताकि हम अपनी ज़िंदगियां अमनो आराम से गुजार सकें। हमें अपने मुल्क के कानून के लिए दुआ करनी है कि ज़्यादा कानून जो है वो अच्छे हो जाए, बदल जाए कानून, ज़्यादा से ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं या जो फेवर है वो हम लोगों के हक में आए। हमें अपनी हुकूमत के लिए दुआ करनी है कि हमारी हुकूमत हमें इस चीज़ की इजाज़त दे कि हम खुदा की प्रस्तुति कर सकें। खुदा चाहते हैं कि हम सब दुआ किया करें, क्योंकि खुदा को यही पसंद है और यही खुदा के नज़दीक उम्दा है। हम दोबारा से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब तीसरी आयत अब हम पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस उसका दूसरा बाब तीसरी आयत में लिखा है, ये हमारे मुंजी खुदा के नज़दीक उम्दा और पसंदीदा है। और चार आयत हम पढ़ेंगे, वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे। आमीन। तो खुदा चाहते हैं कि सब लोग नजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुँचे, तो इसलिए हमें सब लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए। हमें इसलिए भी दुआ करनी चाहिए क्योंकि हमारे खुदा नामुमकिनात के खुदा हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बल्कि सब कुछ हमारे खुदा के लिए मुमकिन है। तो इसीलिए हमें दुआ करते रहना चाहिए। लेकिन हम किस तरह से दुआ करें, किस तरह हमें दुआ करनी चाहिए? हमें उस तरह से दुआ करनी चाहिए जिस तरह से याबेस ने बाइबल में दुआ की। हम अपनी अंजीलें दोबारा से खोलेंगे। पहला तवारीख उसका चार बाब और 9 और 10 आयत। पहला तवारीख उसका चार बाब 9 और 10 आयत। और खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है, और याबेस अपने भाइयों से महजूस था और उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा, क्योंकि कहती थी कि मैंने गम के साथ उसे जन्म दिया। और याबेस ने इसराइल के खुदा से ये दुआ की, आह तू मुझे वाकई बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाए और तेरा हाथ मुझ पर हो, तू मुझे बदी से बचाए ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। और जो कुछ उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा। आमीन। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में भी होती हैं जिसकी वजह से हमें गम होता है, जैसे कि गरीबी की वजह से हमें गम होता है, जब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो उसकी वजह से हमें गम होता है, जब हम बीमार होते हैं तो उसकी वजह से हमें गम होता है, जब हमारे दोस्त हमें धोखा देते हैं उसकी वजह से भी हमें गम होता है, जब हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है तो भी हमें गम होता है, जब हमारा हक हमको नहीं मिलता तब भी हमें गम होता है, जब लोग हमारा नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तब भी हमें गम होता है, और सबसे बढ़कर हमारे गुनाह की वजह से हमें गम होता है, हमारे गुनाह की वजह से हमें गम होता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें ताकि इस गम से हम छुटकारा हासिल कर सकें। हमें ज़रूरत है कि हम ज़बेज़ की तरह दुआ करें। उसने ना सिर्फ दुआ की बल्कि वो खुदा के सामने रोया भी और उसने कहा कि खुदा मुझे बरकत दे और मेरी हदूद को बढ़ाएं और तेरा हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। तो ये याबेज़ की दुआ थी। अब हम याबेज़ की दुआ को थोड़ा तफसील से देखेंगे कि उसने दुआ की और इस दुआ को हम अब थोड़ा तफसील से देखेंगे। याबेज़ ने सबसे पहले कहा कि मुझे बरकत दे। हमें भी इस दुआ को अपनी रोज़मर्रा की दुआ में शामिल करना चाहिए कि खुदा मुझे बरकत दे। हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हमें नहीं पता होता, हम अवेयर नहीं होते, लेकिन जब हम ये दुआ करते हैं कि खुदा हमें बरकत दे तो खुदा हमें उस चीज़ की बरकत देते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। तो इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमें बरकत दे। और दूसरी जो उन्होंने दुआ की वो ये थी कि मेरी हदूद को बढ़ाए। अब मेरी हदूद को बढ़ाए से क्या मुराद है? मेरी हदूद को बढ़ाए से मुराद है कि मेरे ईमान को बढ़ाए, मेरे दिल में जो खुदावन आपके लिए मोहब्बत है उसको बढ़ाए, मेरे दिल में जो कलीसिया के लिए मोहब्बत है उसे बढ़ाए, मेरे दिल में जो आपके कलाम के लिए मोहब्बत है उसे बढ़ाए, मेरे कारोबार को बढ़ाए, मेरी खिदमत को बढ़ाए, मेरी तनख्वाह को बढ़ाए और मेरे ईमान को बढ़ाए। तो हदूद में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि खुदावन आप मेरी इन सारी चीज़ों की हदूद बढ़ाएं, मेरी दुआया ज़िंदगी को बढ़ाएं, मेरे कारोबार को बढ़ाएं, मेरे ईमान को बढ़ाएं, मेरी तनख्वाह को बढ़ाएं, मेरे दिल में जो मोहब्बत है आपके लिए उसे बढ़ाएं, मेरे दिल में जो हमारी कलीसिया के लिए मोहब्बत है उसे बढ़ाएं और मेरे दिल में जो मेरे ख़ानदान के लिए मोहब्बत है उसे बढ़ाएं। इसी तरह जो तीसरी दुआ उसने की वो ये थी, और याबेज़ ने कहा और तेरा हाथ मुझ पर हो, और तेरा हाथ मुझ पर हो। अब खुदा का हाथ क्या है? खुदा का हाथ कवि हाथ है, खुदा का हाथ बरकत वाला हाथ है, खुदा का हाथ शिफा वाला हाथ है, खुदा का हाथ हिफाजत करने वाला हाथ है, खुदा का हाथ सही दिशा दिखाने वाला हाथ है, खुदा का हाथ प्रोविजन का हाथ है, खुदा का हाथ कवि हाथ है। और जो चौथी दुआ उसने मांगी वो ये थी और तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, और तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। हमें ये दुआ, इस दुआ का मतलब कि तू मुझे बदी से बचा ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो, इसका मतलब है कि तू मुझे शैतान से बचा, तू मुझे शैतान के मंसूबों से बचा, तू मुझे बुरे लोगों से बचा, तू मुझे धोखा देने वाले दोस्तों से बचा, तू मुझे फजूल खर्ची से बचा, तू मुझे एक्सीडेंट से बचा, तू मुझे बीमारी से बचा। तो जिस तरह याबेज़ ने दुआ की हमें उस तरह से दुआ करनी चाहिए। और जब हम, जैसे कि हमने पढ़ा 10 आयत की आखिरी हिस्से में, और जो उसने मांगा खुदा ने उसको बख्शा, तो अगर हम भी याबेज़ की तरह दुआ करेंगे तो खुदा हमको भी वो सब बख्शेंगे जो हम उनसे मांगेंगे। अगर हम भी चाहते हैं कि खुदा हमें भी वो सब कुछ दें जो हम चाहते हैं कि खुदा हमें दें, तो हमें ज़रूरत है कि हम खुदा से ईमान रख कर मांगे, खुदा पर भरोसा करते हुए मांगे, खुदा की फर्माबरदारी करते हुए मांगे, वो चीज़ मांगे जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो, वो चीज़ मांगे जो खुदा के कलाम के मुताबिक हो, क्योंकि वही चीज़ हमारे लिए सबसे बेहतर है। और जिस तरह खुदा ने याबेज़ की दुआ का जवाब दिया, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक मांगेंगे, खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक मांगेंगे और फर्मा बरदारी करते हुए मांगेंगे, ईमान के साथ मांगेंगे, तो खुदा हमारी भी दुआ का जवाब देंगे। लेकिन ज़िम्मेदारी हमारी है कि हम दुआ करें, हम हिम्मत ना हारें, हम दिल में कोई शक ना रखें, बल्कि लगातार दुआ करते रहें, ये जानते हुए कि हमारी दुआ का नतीजा ज़रूर आएगा, हमारी दुआ का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा। शायद देर से मिले, लेकिन हमें हमारी दुआ का जवाब ज़रूर मिलेगा। हमें सब लोगों के लिए दुआ करनी है, हमें हुक्मरानों के लिए दुआ करनी है, बादशाहों के लिए दुआ करनी है, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है, हमें जो हमें सताते हैं उनके लिए हमें दुआ करनी है, हमें सब लोगों के लिए दुआ करनी है। और हमें दुआ करनी है जिस तरह याबेज़ ने दुआ की खुदा से, ताकि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे। अब हम आखिरी हवाला पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से, जबूर नंबर 91, जबूर नंबर 91 उसकी 15 और 16 आयत, जबूर नंबर 91 उसकी 15 और 16 आयत। और खुदा के मुकद्दस कलाम में यूँ लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से असूदा करूंगा और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। आमीन। और अगर हम चाहते हैं कि हमें खुदा बरकत दे, हमारी हदूद को बढ़ाएं, खुदा का हाथ हम पर हो, खुदा हमें बदी से बचाएं ताकि वो बदी हमारे गम का बाइस ना हो, खुदा हमें मुसीबत से छुड़ाएं, खुदा हमें इज्जत बख्शे, खुदा हमें उम्र की दराजी दे और खुदा हमें अपनी निजात दिखाएं, तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने सरों को और अपने दिल को झुकाते हुए खुदा के हजूर आएं, खुदा से मांगें ये सारा कुछ। आज खुदा हम सबको बुलाते हैं अपने पास, ताकि हम सब दुआ में खुदा के पास आएं। आमीन। तो ये हमारा आज का कलाम था। अब हम सब मिलकर दुआ करेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे आज के कलाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया। आए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। ज़मीन और आसमान के मालिक, कादर मुतलिक खुदावंद, दिलो जान से और रुकी गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं आज के कलाम के लिए जो आपने हमें दिया। खुदावंद, हम सारे इज्जत और जलाल आपके नाम को देते हैं और आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि आज आपने हमें दुआ के बारे में सिखाया। हमारी मदद करें खुदावंद कि हम आपके हजूर आएं और दुआ करें, आपके साथ बातचीत करें और बरकत हासिल करें। आप हम सब के साथ होइए खुदावंद। हमारे दिल में खुदावंद आप अपने लिए मोहब्बत डालें। हमारी मदद करें कि हम अपने दिल से और जान से आपसे मोहब्बत करें और आपकी खिदमत करें और आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, आपकी मर्ज़ी को हम अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। खुदावंद आप हम सब के साथ होइए और हमें तौफीक बख्शिए कि हम आपके कलाम के मुताबिक चलें और आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदावन, हम ये छोटी सी दुआ मांगते हैं अपने प्यारे मुनज्जी खुदावन यीशु के नाम में। आमीन आमीन।